मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, चलिए ऑफिस चलते हैं, वेद अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला। तुम लोग भी ऑफिस आ जाना, मैं वेद को कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जा रहा हूँ। हम लोग सीधे वहीं से ऑफिस पहुँच जाएंगे, बलवंत ने कहा। ठीक है, आप जाइए, ना चाहते हुए भी बृजेश बोला। किसी को भी वेद का आना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि अब सीधी सी बात थी, बलवंत की जगह वेद सीईओ बनेगा। सभी समझते थे कि वो हमेशा में विदेश में सेट हो जाएगा और बलवंत के बाद इनमें से ही कोई मेरा इंडस्ट्री का सीईओ बनेगा। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी अपनी जगह से उठने लगे थे। शॉपिंग मॉल, इस शॉपिंग मॉल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसका इंटीरियर डिज़ाइन कैसे तैयार करना है और इसे शहर का नंबर वन मॉल बनाना है, बलवंत ने गाड़ी में बैठे हुए वेद से कहा। ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है। सामने मॉल की बिल्डिंग जिसका लिपाई का काम चल रहा था, 9 मंजिलें पूरी हो चुकी थीं। जानते हो, पूरी फैमिली यही सोचती है कि तुझमें वो काबिलियत नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए सीईओ बनोगे कि तुम मेरे बेटे हो, मगर तुम्हें साबित करना होगा कि तुम बहुत काबिल हो। जो तुम्हारे पास है वो उन लोगों के पास नहीं। मेरे और तुम्हारी मॉम के पास 51% शेयर्स हैं। तो डैड, आपको लगता है मुझमें इतनी काबिलियत है? वेद ने पूछा। मेरा बेटा है, मुझे कैसे नहीं पता होगा। सिर्फ अपने गुस्से और जिद को कम करो। उस दिन उस एक्सीडेंट की वजह भी तुम्हारी जिद थी। ज्यादा स्पीड पर तुम गाड़ी चला रहे थे और दूसरे को साइड तक देना नहीं चाहते थे। इसकी सजा ये थी कि तुम इतने सालों के बाद इंडिया वापस आए हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, मगर तुम्हारी मॉम पल पल रोई है। मगर वो मुझसे मिलने आती तो थी वहां पर, वेद ने कहा। माँ बाप मिलना नहीं चाहते, साथ रहना चाहते हैं। जो लड़की तुम्हें पसंद हो हमें बता देना, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। बस हमारे अरमान है तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चे हों, हम तुम्हारी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। अगर तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते, कम से कम एक शहर में तो रहो, जब हम चाहें तुमसे मिलने आ जाएं, बलवंत वेद खुलकर बात कर रहा था। डैड, मैं अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, वेद ने कहा। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम अभी शादी करो, बिजनेस की तरफ ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है तो आंखें हम आंखें बंद करके तुम्हारी शादी कर देंगे, जहां तुम कहोगे। हम अपने बेटे की फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, कहते हुए उसके डैड की आंखें बाहर आई थीं। डैड, आप तो रोने लगे, वो उनके गले लग गया। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमें तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना है। बिजनेस छोड़कर मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हारे बच्चों को खिलाएंगे। तुम दोनों मियाँ बीवी अपनी जिंदगी जीना, अपने बच्चों को हमें दे देना पालने के लिए। उसके डैड उसे हर तरह से कन्विंस करना चाहते थे कि वो हर हाल में उसके साथ हैं, क्योंकि वो जिस तरह का जिद्दी और गुस्से वाला था, उन्हें डर था कि कहीं वो फिर कोई गलती ना कर बैठे। कोई शक नहीं था कि वो बहुत इंटेलिजेंट था और उसे अपने मॉम डैड से बहुत प्यार था। आप फिक्र क्यों करते हैं? देखना, मैं इस मॉल को मैं कैसे हैंडल करता हूँ। रही बात मैरिज की, और अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर आपके बच्चे चाहिए होंगे तो बता देना। बच्चे पैदा करने के लिए शादी की क्या जरूरत है? वेद ने शरारत के साथ कहा। वेद के मिलवाने के लिए बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी, सभी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। सारी, हम दोनों लेट हो गए, बलवंत ने मीटिंग रूम के अंदर आते ही कहा। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ? कमल शर्मा, जो उनकी कंपनी की एक डायरेक्टर थी, उसने कहा। वेद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलता है। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें वो जानता था और कुछ चेहरे नए थे। उसने सभी चेहरों में उसकी अपनी फैमिली के भी चेहरे थे। उसने ध्यान से देखा। वो जानता था कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो भाग जाएगा, वो यहाँ नहीं रहेगा, मगर वेद जाने के लिए तो आया ही नहीं था, वो जहाँ का बिजनेस संभालने वाला था। मीटिंग पर खत्म होते ही उसके डैड उसे उसका ऑफिस दिखाने ले गए। देखो, मैंने तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारी पसंद के हिसाब से तुम्हारा ऑफिस रेडी करवाया है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। उसकी एक वॉल ग्लास की बनी हुई थी जिससे सारा शहर दिखाई देता था, एक साइड, साथ ही एक गेस्ट रूम भी था और गेस्ट रूम में एक छोटी सी किचन थी। गेस्ट रूम से एक दरवाजा बाहर की तरफ ही खुलता था, जो बाहर की स्टेयर की तरफ जवजा था। डैड, ये बहुत ब्यूटीफुल है, आपका ये बाहर की सीढ़ियां वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे पता है, जब मेरे बेटे को भागना होगा, कम से कम तो वो यहाँ से भाग सकता है। याद रखना, जो ऑफिस के पीछे जाकर निकलती हैं, सिर्फ स्टेयर है, लिफ्ट नहीं है। वो कोई बात नहीं है, आपका बेटा एक्सरसाइज करता है। आपको क्या लगता है, स्टेयर से मुझे डर लगता है? वो हंसने लगा। अच्छा, तो तुम अपना काम स्टार्ट करो, मैं अभी उस प्रोजेक्ट की फाइल भिजवाता हूँ। बलवंत मेहरा उस मॉल के प्रोजेक्ट की बात कर रहा था जो वो वेद को दिखाकर आया था। ठीक है डैड, आप फाइल भेजिए, मैं देखता हूँ। मैं आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट से किसी से कहता हूँ, वो फाइल तुम्हारे पास पहुँच जाएगी, क्योंकि वेदांत उसका इंटीरियर डिजाइन पर काम करना चाहता था, इसीलिए वो उसी की फाइल मंगवा रहा था। मैं आई कम इन सर, किसी ने उसके खुले हुए ऑफिस के डोर पर पहुंचकर कहा। वेदांत, जो ग्लास वॉल से पूरा शहर देख रहा था, बिना देखे उसकी तरफ देखे बोला, फाइल टेबल पर रख दो। वेद की पीठ तरफ देखते हुए उस लड़की ने कहा। जी सर।
उस लड़की ने फाइल टेबल पर रखी और जाने लगी। सुनो, वेदांत जो चलकर टेबल तक आ गया था, वो लड़की जो लगभग उसके केबिन से बाहर निकल चुकी थी, उसे कहा, सुनो, ये इंटीरियर प्रोजेक्ट की फाइल है, मुझे मॉल का प्लान चाहिए, जो भी तुम लोगों के पास हो वो ले आओ। वो लड़की वेद की बात पर घूमी। सर वो फाइल तो, वेद का चेहरा देखते हुए उस लड़की के शब्द उसके मुंह में ही रह चुके थे। वेदांत भी उसे हैरानी से देख रहा था। तुम यहां क्या कर रही हो? वो लड़की अभी भी सदमे में थी। जितना वेद हैरान था, उससे ज्यादा वो लड़की हैरान थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समझा, मेरे बारे में पता लगाने के बाद मेरा यहाँ आने का इंतजार कर रही हो और मेरे आते ही पहले दिन पहुंच गई मेरे सामने। तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। मुझे इस ऑफिस में तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। निकल जाओ इस ऑफिस से, आज के आज, अभी के अभी। वो बहुत गुस्से में था। वो लड़की भाग कर वहां से चली गई। वो इतनी हैरान परेशान थी। अब उसकी लाइफ जब सही होने लगी थी तो वो वापस आ गया था उसके सामने और उस पर ही ब्लेम कर रहा था। उसका जहां होना उस मांदी की समझ से बिल्कुल बाहर था। वो पिछले 2 सालों से जहां काम कर रही थी मगर उसे कभी नहीं देखा था, और आज अचानक कहां से आ गया? 5 साल से जो चेहरा मुझे रोज रात को सोने नहीं देता, और मेरे इंडिया आने के पहले दिन वो जो लड़की जहां पर है। मैं तो सोच रहा था पता नहीं बेचारी का क्या हुआ होगा, मगर ये तो मेरा इंतजार कर रही है, वेद ने कहा। टेबल पर जो सामान पड़ा था उसने गुस्से में हाथ मारकर नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो उसे मिलेगी उसने सोचा नहीं था। इतने साल से मैं सो नहीं सका और ये आराम से जहां पर मेरा इंतजार कर रही है। जब सामान नीचे गिरा तो बाहर रिसेप्शन पर जो लड़की थी वो भाग कर आई। क्या हुआ सर?
इस ऑफिस को ठीक करो, कहता हुआ वेदा, जो उसके गेस्ट रूम में जो दरवाजा था उस पिछले दरवाजे से निकला और सीढ़ियों से ऑफिस से बाहर चला गया। उसे पेंट हाउस का ख्याल आया जो उसके डैड से दिया था, तो वो गाड़ी उठाकर वहीं चला गया। वो बहुत बेचैन था। रात हो चुकी थी, डिनर का टाइम होने वाला था, मगर वेद अभी तक घर वापस नहीं आया था। आपने ऐसा कौन सा काम दिया है उसे कि वो पहले दिन ही नहीं आया? उसकी मॉम उसके डैड पर गुस्सा हो रही थी। तुम्हारा गुस्सा हमेशा मुझ पर ही क्यों निकलता है? मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कंट्रोल कर सकूं। उसे फोन करो और पता करो कि वो कहाँ है, उसके डैड ने हंसकर कहा। उसकी माँ उसे फोन करने लगी। पहली बार बेल जाती रही, उसने फोन नहीं उठाया। उसकी माम ने दूसरी बार फिर फोन किया। इस बार उसने पहली बेल पर ही उठा लिया। सॉरी माम, मैं वॉशरूम में था। कहाँ हो बेटा? खाने का टाइम हो रहा है। मैं पेंट हाउस में हूँ, आज मैं नहीं आ रहा। प्लीज बात बात पर फोन मत किया करो, मुझे ऐसे जवाब देना पसंद नहीं, कहते हुए वेद ने फोन काट दिया। प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें।